आज श्रीवास पंडित का आविर्भाव है, उस उपलक्ष्य में हम चैतन्य भागवत से उनका चरित्र सुना रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से इसको श्रवण करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो सबसे पहले एक घटना है, जब चैतन्य महाप्रभु पढ़ाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, उस समय वे ना तो भक्त थे और ना भक्त बनाते थे किसी को, केवल विद्या सिखाते थे और विद्वान थे। तो श्रीवास ठाकुर ने उनको जो है डांटा, चैतन्य महाप्रभु को डांटा। तो ये घटना है आदि खंड में, ये आठवां अध्याय है। एक दिन महाप्रभु राजपथ पर आए, चारों ओर इनके साथ 5-7 छात्र चल रहे थे। आपने सुंदर वस्त्र धारण किए थे, अंगोछा सीतांबर की भांति धारण किया हुआ था और ओठों में पान था और मुख था करुणा चंद्रमा के समान। देख करके लोग चकित हो जाते, साक्षात कामदेव जैसे लगते हैं भगवान। मस्तक पर तिलक है, कैसा ऊर्ध्वकुंड तिलक है, हाथ में पुस्तक है और नेत्रों से एक बार जिसको देखते हैं उसका सब दुख हरण कर लेते हैं। और छात्रों के साथ में चंचलता कर रहे हैं भगवान और अपने दोनों हाथों को तेजी से हिलाते हुए सड़क में चल रहे हैं। एक दिन प्रभु आए थे राजपथे, सात पांच पढ़ो या प्रभु चारी भीते, व्यवहार योग्य वस्त्र पात्र परिधान, अंगे पानी तो लपीत पटे समान, आधारे तांबूल कोटि चंद्र श्री बदन, लोके बोले मूर्ति मंत्र एकी मदन, लला कृति लगा और दो पुस्तक श्री करे, दृष्टि मात्र पद में नेत्र सर्वताप हरे। अब देव योग से श्री प्रभु ने क्या देखा, श्रीवास पंडित को रास्ते में आते हुए देखा। तो श्रीवास ने देखते ही जोर से हंसे और इन्हें देख करके प्रभु ने नमस्कार किया और श्रीवास पंडित ने कहा चिरंजीव रहो, और फिर हंस करके पूछा कि कहो तो देखें उद्धव शिरोमणि कहाँ आ जा रहे हैं, कृष्ण भजन ना करके समय को किन कामों में बिगाड़ रहे हैं, रात निरंतर जाने क्यों पढ़ पढ़ा रहे हो, देखो लोग क्यों पढ़ते हैं, केवल कृष्ण भक्ति को जानने के लिए, यदि वो कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो विद्या का क्या फल, इसलिए समय को सर्वथा व्यर्थ ना गवाओ, पढ़ पढ़ा लिए अब शीघ्र कृष्ण भजन में लग जाओ। किसने कहा, श्रीवास ने कहा। जय विपथ आए थे न पंडित श्रीवास, प्रभु देखे मात्र तान हैल महान, ताने देखे प्रभु करी लेन नमस्कार, चिरंजीव हो बोले श्रीवास उदार, हासिया श्रीवास बोले कहा देखे सुनी, कथित लिया चौदतेर चूड़ामणि, कृष्ण ना भजिए काल की कार्य गुआओ, रात्रि दिन निरवधि के निवा पढ़ाओ, पढ़े लोग के न कृष्ण भक्ति जानी भरे, यदि नहिं तब विद्या की करे, एतक सर्वदा व्यर्थ न गुआओ कान, पढ़ी लता ए कृष्ण भजहु सतान।
अब देखिए कि श्रीवास का ही साहस था जो चैतन्य महाप्रभु को डांट सकते थे, और किसकी हिम्मत नहीं थी चैतन्य महाप्रभु को डांटने की। उनका रूप देख करके ही सब हैरान हो जाते हैं, कितने सुंदर हैं भगवान, विद्वत्ता से भी जो ना प्रभावित हो जाते हैं। श्रीवास के पास ऐसी हिम्मत थी जो भगवान को डांट रहे हैं, और महाप्रभु हंसते हैं, उनकी डांट को सुन करके हंसते हैं और क्या कहते हैं, सुनो पंडित जी, आपकी कृपा से निश्चित कृष्ण भजन होगा। भगवान कहते हैं, हंस बोले महाप्रभु सुना पंडित, तुम्हारे कृपा से हो निश्चित। तो ये कुछ मैंने श्रीवास पंडित के बारे में बताया। अब आगे चल करके क्या होता है कि भगवान गया की यात्रा में जाते हैं, तो भगवान चैतन्य गया की यात्रा में जाते हैं और वहाँ ईश्वरपुरी से भेंट होती है, और ईश्वरपुरी से कृष्ण प्रेम की दीक्षा प्राप्त करके जब लौटते हैं तो फिर कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, और कभी हंसते हैं कभी रोते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, और माता शक्ति बड़ी चिंता करती है। तो कई लोग जो है जो भक्त नहीं थे वो क्या कहते हैं कि इनको गैस ट्रबल हो गया है, कुछ वायु का रोग हो गया है ना, इस तरह से सती माता और ज्यादा चिंता करती हैं। तो आगे इसमें कथा है कि सती देवी वही सोचती हैं जैसा जिसके मुख से सुनती हैं, चिंता से व्याकुल हैं और उनको छूटता नहीं है, मन कर्म वचन से श्री गोविंद की शरण में गई। उन्होंने श्रीवास आदि सब वैष्णवों के निकट आदमी भेज भेज कर ये सब वृतांत निवेदन किया। क्या वृतांत निवेदन किया कि उनका पुत्र जो निमाई है उसकी हालत बड़ी गंभीर है। एक दिन श्रीवास पंडित सची के घर आए तो प्रभु ने उठकर सावधानी से उन्हें नमस्कार किया। भक्ति के दर्शन से प्रभु में भक्ति भाव उमड़ उठा, प्रेम के कारण शरीर में रोमांच अश्रु और कंप प्रकट हुआ है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु शरीर में अश्रु कंप रोमांच क्यों हुआ नहीं, यहाँ पर श्रीवास ठाकुर के दर्शन से कि वे परम भक्त हैं, उनको दर्शन से प्रभु तुलसी जी की परिक्रमा दे रहे थे, परंतु भक्त को देखकर तत्काल ही मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में सचेत होने पर प्रभु रोने लगे, शरीर अत्यंत ही कांपने लगा। ये अद्भुत अवस्था देखकर श्रीवास मन में सोचने लगे, ये तो महान भक्ति योग है, कौन इसे वायु का प्रकोप कहता है। प्रभु ने भी सचेत होकर श्रीवास पंडित से पूछा, पंडित तुम मेरी दशा को क्या समझते हो, सब लोग तो ऐसे महा वायु रोग बतलाकर मुझे बांधने के लिए कहते हैं, पंडित जी तुम्हारे चित्त में मेरे बारे में क्या दृष्टा है। पर मैं उदार सचि जग तेर माता, जार मुखे जे सुन कैसे कथा, चिंता है व्याकुल सच किछु नहीं जाने, गोविंद शरण जे लखाए वाक्य मने, श्रीवास आदि वैष्णव सबर स्थान स्थान, लोक द्वारे सच करी लेन निवेदन। एक दिन गेला था तथा श्रीवास पंडित, उठे प्रभु नमस्कार कैला सावहित, भक्त देखे प्रभु रे बड़े ले भक्ति भाव, दो महर्ष अश्रुपाद कंप अनुराग, सोलह तीर अखिल करित प्रदक्षिण, भक्त देखे प्रभु मूर्छ पाई लखन, बाह पाए कतो चरण लागी लखंडित, महाकंपे प्रभु सिर न परे हईते, अद्भुत देखी अस निवास मन जने, महाभक्ति योग वायु बोले कौन जने। अब श्रीवास पंडित हंसकर बोले, बड़ी अच्छी वायु है। पंडित श्रीवास पंडित क्या बोले, बड़ी अच्छी वायु है, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान भक्तियों दिखाई देता है। देखो ये पहला व्यक्ति है जिसे चैतन्य महाप्रभु के लक्षणों को पहचाना है ना, अच्छा तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हुई है। श्रीवास के मुख से जब ये सुना तो प्रभु अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने लगे कि पहली बार प्रभु को सुनने को मिला प्रसन्नता, और बोले सब लोग तो इसे वायु का रोग बतलाते हैं, केवल तुमने ही इस रोग की प्रशंसा की है। अतएव आज मैं बड़ा कृतकृत हो गया हूँ, यदि तुम भी इसे वायु बताते तो मैं क्या करता, गंगा जी में कूदकर आत्महत्या कर लेता। श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को मरने से बचाया, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आप भी कह देते तो मैं आज गंगा जी में कूद करके आत्महत्या कर लिया होता। श्रीवास बोले तुम्हारा जो ये भक्ति योग है इसको तो ब्रह्मा शिव और सुखदेव भी पाना चाहते हैं, उनको भी नहीं प्राप्त हुआ। जो तुमको भक्ति प्राप्त हुई है ब्रह्मा शंकर सुखदेव को भी नहीं प्राप्त हुई है। पाखंडी पापी लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, हम तो सब मिलकर एक स्थान पर अब कीर्तन किया करेंगे। हंसी बोले श्रीवास पंडित भान भाई तुम्हारे की मत भाई कहा चाहिए माँ भक्ति योग देखे तुम्हारे शरीर श्री कृष्ण रे अनुग्रह है तुम्हारे इसे के सुने ले जाने श्रीवास रे मुखे श्रीवास रे आलिंगन ने कैला बड़े सुखे सभी बोले वायु सभी आसम से ले तुम आज बने कैसे कृपे हाई दान आमी यदि तुमने वायु बनी तो हमारे सभी के तुम्हारी आमी गंगा रे भी करे श्रीवास बोले ने जे तुम्हारे भक्ति हूँ ब्रह्म से वैसो का जीवन चाहे तेरी भूम सभी मेरी एक चाहे करीब कीर्तन ये देखे ने न बोले पाखंडी पापी गण। फिर श्रीवास सची माता से बोले अब आप अपने चित्त के सब दुख को दूर कर दो, मैं आपसे कहता हूँ कि ये वायु नहीं है ये कृष्ण भक्ति है, इस बात को और लोग कभी समझ ही नहीं सकते। यदि आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहें तो बाहर वालों से कुछ भी नहीं कहना। इतना कहकर श्रीवास अपने घर को चले गए और सती माता के हृदय से भी वायु रोग होने का भ्रम दूर हो गया। सखी प्रति श्रीनिवास बनीला बचन चित्ते रजते के दुख का रहा खंडन वायु न है कृष्ण भक्ति बनीले तुम्हारे यहाँ काबू अन्य जन वो जीवा रे नारे जिन लोग यहाँ के छू न कहीं वा अन्य के कृष्ण रे यदि रहस्य देखी वा। आगे चल करके क्या होता है, श्रीवास के घर में भगवान चैतन्य भक्तों के साथ मिलकर के कीर्तन करने लगे हैं, है ना। तो लोग जो है जो पाखंडी थे वो निंदा करने लगे। कैसे निंदा करते हैं, इसमें लिखा है महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया जिसे देखकर सब भक्तों के दुख नाश होने लगे। श्री सची नंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते जिससे पाखंडियों की निद्रा भंग हो जाती और उनका जागरण होने लगता। निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध होता और जिसके मन में जो आता वही बकने लगता। कोई कहता क्या इन लोगों की वायु बिगड़ रही है, कोई कहता क्या करें इनके मारे रात में सो नहीं पाते, कोई कहता इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, कोई कहता ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने बिल्कुल उद्दम चाल पकड़ ली है, कोई कहता कौन जाने ये किस लिए कीर्तन करते हैं, श्रीवास ही ये सब उपद्रव मचा रहा है। इस तरह से बहुत तरह के लोग जो है ना कई प्रकार की बातें करते हैं। हरि बोल बनेगा के श्री सची नंदन घन घन पाखंडी रहे जागरण निद्रा सुखे भंग बहिर मुख्य क्रुद्ध है जार जे नमते इच्छा बलिया मरई के वो बोले ए गुला रहे लेकी भाई के वो बोले रात्र निद्रा जाहि ते न पाई के वो बोले गोसाई रोचे वे घन ढाके ए गुला रे सर्वनाथ है वे ए पाके के वो बोले ज्ञान योग एरी अधिकार सारा में ओधत है सबार व्यवहार। हुआ क्या कि पाखंडियों ने कुछ गलत अफवाह फैला दी, क्या कि राजा की सेना आ रही है ये जो कीर्तन करने वाले हैं इनको बंदी बनाने के लिए। तो श्रीवास ठाकुर के मन में कुछ भय पैदा हो गया। तो भगवान क्या सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि अब भक्तों का भय तो दूर करना चाहिए, तो भक्त लोग नहीं जानते हैं कि भगवान है, तो अब भगवान चाहते हैं जनाना कि भक्त लोग जाने कि ये भगवान है और उनको अब कोई डरने होना चाहिए और कीर्तन बिल्कुल बिना किसी शंका के कीर्तन करते रहे हैं। तो भगवान अचानक दौड़ करके श्रीवास के घर पहुंचे और बड़े गर्व के साथ बोले, अरे श्रीवास तू क्या कर रहा है? अब जिस कमरे में श्रीवास नरसिंह जी की पूजा कर रहे थे उसके द्वार पर प्रभु बारंबार लात मारने लगे और कहने लगे, अरे तू किसकी पूजा कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको सामने देख। ज्वलंत अग्नि जैसा तेज वाले श्रीवास की समाधि भंग हो गई। अभी चारों ओर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि श्री विश्वंभर किस रूप में है, चतुर्भुज रूप में है, चतुर्भुज रूप में है, संघ चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वीरासन से बैठे हैं और मत सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं और हुंकार कर रहे हैं। ये देखकर श्रीवास का शरीर कांप उठा, वे हक्के बक्के रह गए और मुख से कुछ भी ना बोल सके। प्रभु पुकार कर बोले, अरे श्रीवास तूने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना, तेरे उच्च संकीर्तन से मैं वैकुंठ को छोड़कर सब परिवार सहित यहाँ आया हूँ, तू तो मुझे लाकर निश्चिंत हो गया है। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा और सब दुष्टों का विनाश करूंगा, तू कुछ चिंता मत कर, मेरी स्तुति पढ़। प्रभु को देखकर श्रीवास प्रेम में रोने लगे, प्रभु का आश्वासन पाकर उनके हृदय का भय दूर हो गया। श्रीवास पंडित एक तो वैसे ही महाभागवत हैं, उस पर प्रभु की आज्ञा हुई, अब तो उनके मन की चाही हो गई, वे स्तुति करने लगे। निशंगाए पूजाए तिने वास जे घर, पुना पुना लाथी मारे ताहारे दुयारे, ताहारे वा पूज से करी सकार ध्यान, जहारे पूज से तारे देखे विद्यमान। जो लंते आना लगे न श्रीवास पंडित, हाइले समाधि भंग चाहे चारी वितन, देखे वीरासन बस आखि विश्वंभर, चतुर्भुज संघ चक्र गदा पन्न धर्म, गर्जित आशाए जेन मत सिंह सार, बाम कक्ष तारी दिया कर हुंकार। देखी यहाँ इले कंप श्रीवास शरीर, सभ्य हिला श्रीनिवास के तुई न सूरे, दसिया बोलाए प्रभु आर श्रीनिवास, एक दिन में न जाने से हमारे प्रकार, तोरे उच्च संकीर्तन में नाला रे ओंकार, साधी या वैकुंठ आयु सर्व परिवार, निश्चिंत आशा तुम्हें हमारे आनिया, शांति पूरे गेल नाला हमारे एरिया, साधु उद्धारे मो दुष्ट बिना सी मुसम, और कित चिंता नहीं पड़े मूर्त। अब श्रीवास पंडित ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, क्या बोलते हैं, श्री विश्वंभर के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका वर्ण नवीन मेघ को जीतने वाला है, जो पीताम्बर पहने हुए हैं, सची नंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनके नवीन गुंजा और मोर पंख ही भूषण है, गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है, जो बनमाला पहने हुए हैं और जिनके हाथ में दही भात का ग्रास है, श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरण में मेरा नमस्कार है, जिनके मुख की रूप माधुरी कोटि चंद्रमा को जीतने वाली है, जिनके भूषणों के चिन्ह सींग देव और वेणु है, वही तुम नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हो, सारो वेद जिनको नंद कुमार कहकर घोषणा करते हैं वे आप ही हो, आपके चरणों में नमस्कार है। विश्वंभर चरण आमार नमस्कार, नव घन जिन वर्ण पीत वास जान, सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंज शिखि पुष्प भूषण जहां, गंगा दास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वन्य माला कार्य दधि ओदन जहां, जगन्नाथ पुत्र पदे मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जिन्ह रूप बदन जहां, सिंगा वित्र व्यणो चिन्ह भूषण आहां, से तुम नव दीप कैले अवतार, चारी वेद चार गो से नंदेर कुमार, से तुम तुम्हारे चरण नमस्कार। इस प्रकार श्रीवास पंडित प्रभु के चरणों में स्तुति निवेदन करने के लिए और जो कुछ मुंह में आया वो निधड़क बोलते गए, हे प्रभु तुम विष्णु हो, तुम यज्ञेश्वर हो, तीर्थ श्रेष्ठ गंगा तुम्हारे ही चरणों का जल है, तुम जानकी वल्लभ श्री राम हो, तुम नरसिंह हो, ब्रह्म शिव तुम्हारे चरणों के दास हैं, तुम ही वेदांत वेद हो, तुम ही नारायण हो, तुमने ही बामन बनकर बलि को छला, तुम हाई ग्रीव हो, तुम ही सबके तारक प्राण करता नीलाचल निवासी जगन्नाथ हो, तुम्हारी माया से कौन नहीं हारा, सदा साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी आपकी महिमा नहीं जानती है। जो साथी सखा भाई के रूप में सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करते हैं, ये प्रभु बलराम भी तुम्हारी माया से मोह में पड़ जाते हैं। तो फिर औरों की तो बात ही क्या, प्रभु तुमने मुझे भी किस मिथ्या गृहस्थी में भुला रखा है, तुम्हें न जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है। हे नाथ, तुमने कितने कितने छल करके मुझे छला, तुम मेरी पूजा की डाली और धोती तक उठाकर चलते रहे, उससे मुझे प्राणनाथ भय नहीं है, प्रसन्नता है, कारण कि आप जैसे प्रभु मुझे साक्षात मिल गए, आज मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया, आज मेरा सुख दिवस उदय हुआ, आज मेरा जन्म मेरे कर्म सब सफल हो गए। कौन कह रहा है? श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं, आज मेरे समस्त सुमंगल उदय हो आए, आज मेरे पितृकुल का उद्धार हो गया, आज मेरा निवास स्थान धन्य हो गया, आज मेरे नेत्रों के सौभाग्य की सीमा नहीं है, कारण कि आज मैं इन नेत्रों से उनको देख रहा हूँ जिनके श्री चरणों की लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। तुम ही विष्णु, तुम ही कृष्ण, तुम ही यज्ञ स्वर्ण, तुम्हारे चरणों धक्त गंगा तीर्थ वर्ण, जाना के वल्लभ तुम ही नर सिंह, अज भाव आज चोर चरण रिंग, तुम ही से वेदांत वेद तुम ही नारायण, तुम ही से छलीला बलि हैया बामन, तुम ही है ग्रीव तुम ही जगत जीवन, तुम ही नीला चल चंद्र सभर तरण, तुम्हारे माया कार नहीं है भंग, सम्मेलन जन जार सन एक संग, संग सखा भाई सर्व मत से विजेन, इन प्रभु मोह माने अन्य जन के, मिथ्या गृह वास मोरे पड़ी अच भोले, तुम न जनिय मोर जन्म गेल हिले, नाना माया कारी तुम हमारे बंसीला, साजी धुती आजी कारी हमारे बहिलम, साते मोर भय नाय सुन्य प्राण नाथ, तुम हे न प्रभु मोरे हई न सखा, आज मोरे सकल दुखे रही जना, आज मोरे दिवस हई ले परका, आज मोरे जन्म करम, आज मोरे जन्म करम, आज मोरे जन्म कर्म सकल सफल, आज मोरे उदय सकल सुमंगल, आज मोरे पितृकुल हई ले उद्धार, आज से बसती धन्य हई ले आमान, आज मोरे नया न भाग्य नय सीमन, ताहे देखि सा ताहे देखि जार से चरण से रमन। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित आवेश में आ गए और भुजा उठाकर रोने और लंबी लंबी सांस लेने लगे। श्री गौरचंद्र के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीवास धरती पर लोटपोट हो गए। श्रीवास के तन मन में ऐसा अद्भुत सुख हुआ कि वे आनंद सागर में डूब गए। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी और फिर दया पूर्वक श्रीवास से बोले, श्रीवास तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं उन सबको बाहर बुलाओ, वे सब मेरा रूप देखें, तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित अपने परिवार से शीघ्र ही आ गए। उन्होंने विष्णु पूजा के लिए जितने फूल थे वे सब प्रभु के चरणों में चढ़ा दिए। उन्होंने सुगंधी माला भू दीप के द्वारा श्री चरणों की पूजा की। स्त्री सहित श्रीवास रोने लगे। फिर भाई पत्नी दास दासी सबको लेकर भी प्रभु के चरणों में पड़ गए और दीन वचनों द्वारा प्रार्थना करने लगे। श्रीवास के प्रिय कर्ता विश्वंभर प्रभु ने सबके सिर पर अपना चरण रख दिया। प्रभु सबके सिर पर चरण स्पर्श करते हुए भ्रमण करने लगे और हंसकर बोले, मुझ में सबका चित्त हो। फिर हुंकार गर्जन करते हुए श्रीवास से बोले, हाथ या सोने ने प्रभु श्रीवास स्तुति, सदय है या बोले श्रीवास तेरे पति, स्त्री पुत्र आगे गते तुम्हारे बाड़ी, देखो के आमारे रूप का रहा बाहिर, सत्र के है या पूज चरण अमर, भरे मांग जेने इच्छा था कहे तुम, प्रभु रे पाई आज्ञा श्रीवास पंडित, सर्व परिकार आई लवरित, विष्णु पूजा निमित जते के पुष्प छिन, सकल प्रभु पाए सकते दिन, गण्य माले धोपे देते पूज सितरन, शत्रु के हई अवित्र कर चंदन, भाई पत्नी दास दास सकल लैया, श्रीवास कर चरण पड़ियम, श्रीनिवास प्रिय कर प्रभु विश्वभर, चरण जलेन सर्व सिर ऊपर, अलख से बोले प्रभु माता है सभार,
हाथी बोले मोरे तुझसे हाउ सब काम हुंकारे गर्दन में करे प्रभु विश्वभर श्रीनिवास संबोधिया बोले न उत्तर आये श्रीनिवास के तुम ने भय पाऊ सुनि तुम धरित आई से राज नवम अनंत ब्रह्मांड वाले जत जीव बैठे तभारे प्रेरक आम आप नारे रखे। अब भगवान क्या कहते हैं, तुम मन में कुछ डर रहे हो हा? मैंने सुना है तुम लोगों को पकड़ने के लिए एक राजा की एक सेना आ रही है। तो सुनो अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उन सब का मैं शिक्षानुसार प्रेरक हूँ, अतः जब मैं उस राजा के शरीर के भीतर से बुलवाऊंगा तभी वह पकड़ने के लिए बोलेगा है? तो तुम क्यों डरते हो, वो कैसे राजा बोल कैसे सकता है पकड़ने के लिए अगर मैं नहीं बुलवाऊंगा तो। और अगर मान लो स्वतंत्र रूप से उसने आज्ञा करी दी तो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ूंगा और राजा के सम्मुख पहुँचूंगा। मुझे देखकर राजा क्या आपने आसन पर बैठा रहेगा क्या मैं उसे बेवल बनाकर वहीं ना गिरा सकूंगा? अगर ऐसा ना हुआ और राजा ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं तो चाहता हूँ मैं उसे जो कहूंगा वो सुनो, मैं राजा से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अरे राजा सुन तू तो सच और झूठ को पहचान, जितने तेरे काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला ले। भगवान कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा राजा के पास, तुम लोग चिंता मत करो, तेरे जितने काजी मुल्ला हैं सबको बुला ले और तेरे जितने हाथी घोड़े पशु पक्षियां उन सबको भी अपने पास मंगवा ले। फिर अपने सब काजी मुल्लाओं को आज्ञा कर कि अपना शास्त्र कुरान पढ़कर इन सब पशु पक्षियों को रुलाएं। यदि वे काजी मुल्ला ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा और कहूंगा अरे राजा तो इन लोगों के कहने से संकीर्तन बंद कराता है, इनकी जितनी भी शक्ति है वो तो तूने सब देख ली, अब तू आंख खोल करके मेरी भी शक्ति देख। इतना कहकर मैं एक मतवाले हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़ा पशु पक्षी सबको वहाँ इकट्ठा करूंगा और वहीं पर उन सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। राजा के जितने लोग हैं उन सबको कृष्ण कृष्ण कहवा कर खूब रुलाऊंगा। मोरे देखे राजा के राय देने पसंद वे वाले कार्य न पानी मुझे से ही खाने के दीवा ए मत नए जिज्ञास वे मोरे से हो मोरे आगे से सुना कहूँ चोरी सुने सुने आए राजा सत्य मिथ्या जान जते के मुल्ला का जी सब तोर आन हाथी घोड़ा पशु पक्षी जते तोर आखिन सकल आना है राजा आप नार कठिन आज्ञा कर सकल कजीरिन अपना शास्त्र बल कंदा उभारी न पारे ले तारा जति ऐसे करी ते सब से आपा न देख करी वे राजा तीन संकीर्तन में मन कर ए गोलार बोलिन जते तार शक्ति ए देखी ले सकलिन मोर शक्ति देख ए वे नयन भरिया एते बली हसे एते बली मत हसी आने वे भरियम हसी घोड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया खाने का नहीं श्री कृष्ण बलियम राजा रे जत के कण राजा रे सहित सब का नहीं कृष्ण बलि भाल मते। श्रीवास यदि तुम्हारे मन में इस बात पर विश्वास नहीं होता मैं तो मैं तुम्हारे सामने ही करके दिखलाता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा तो तुम नहीं समझ पाओगे, मैं अभी तुमको दिखाता हूँ करके तुम अपनी आंखों से देख लो। श्रीवास की भतीजी नारायणी नाम की एक बालिका को प्रभु ने अपने सामने देखा है? 4 वर्ष की वो बालिका तो गौरचंद्र ने आज्ञा दी नारायणी कृष्ण कृष्ण कहकर रो। 4 साल की बच्चियों को कहा कि कृष्ण कृष्ण कहकर के रो। 4 वर्ष की बालिका प्रेमोन्मत्त हो गई, हाँ कृष्ण कहकर रोने लगी और कुछ ज्ञान उसे न रहा, आंसू की धारा उसके शरीर को भिगोती हुई पृथ्वी पर बहने लगी और वो स्थान उस जल से भर गया। देखा 4 वर्ष की बालिका कितना आंसू बहाए कि स्थान भर गया आंसुओं से। तब प्रभु विश्वंभर हंस हंस कर कहने लगे अरे श्रीवास अब तो तुम्हारा सब भय दूर हो गया ना। श्रीवास जी बड़े भारी भक्त हैं और सब सत्य ज्ञाता है, दोनों भुजा उठाकर प्रभु से बोले आप
काल रूप से जब समस्त सृष्टि का संहार करते हैं तब भी आपकी कृपा से मैं भयभीत नहीं होता हूँ। ये कहते कहते श्रीवास को आवेश हो आया, ये आनंद पूर्वक परिवार सहित प्रभु का दर्शन करने लगे। चारों देश जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं उनको श्रीवास के सब दास दासी देख रहे हैं। श्रीवास के चरित्र को मैं क्या कहूँ, जिनके चरण धूल से संसार पवित्र होता है। जैसे श्री कृष्ण का अवतार तो वसुदेव जी के घर हुआ, परंतु लीलाएं सब किसके घर में हुई, नंद बाबा के घर में हुई। वैसे ही ये घोर अवतार भी हुआ जगन्नाथ जी के घर में, परंतु सब लीलाएं किसके घर में हुई, श्रीवास पंडित के घर में हुई। हैं? तो श्रीवास पंडित नंद महाराज जैसे भाग्यशाली, श्रीवास पंडित सब वैष्णवों के बड़े प्रिय हैं, उनके घर जाने में ही सबको बड़ा आनंद होता है। वेद अपने ज्ञान के बल से जिनकी केवल स्तुति करते हैं, श्रीवास के दास दासी उन्हीं को सुख पूर्वक आंखों से देख रहे हैं। इसीलिए वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। वैष्णवों की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। प्रभु विश्वम्भर ने श्रीवास जी को आज्ञा दी कि तुम ये सब प्रसंग किसी को सुनाना नहीं। श्रीवास रे चरित्रम चार चरण दूले संसारे पवित्रम कृष्ण अवतार जेन वसुदेव घरे जते के बिहार सब नंदिर मंदिर जगन्नाथ घर आये अवतार श्रीवास पंडित गृह सकल बिहार सर्व वैष्णवेर प्रिय पंडित श्रीवास सार बार गेल मात्र सभर उल्ला अनुभव जारे सब करे वेद मुखे श्रीवास दास दास तारे देखे सुखिम के वैष्णव सेवा परम हो पाए अवश्य मिले कृष्ण वैष्णव मुख्य पाए। तब श्रीवास पंडित पत्नी वधु भाई दास दासी सबके साथ बड़े आनंद को प्राप्त देखी है। उसको सुन करके कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। सुखमल सुखमय है तब श्रीवास पंडित पत्नी वधु भाई दास दासी सहित श्रीवास करिल स्तुति देखी अप्रकाश यह जय सुनते है कृष्ण दास। घटना है भगवान चतन में श्रीवास पंडित की परीक्षा लेते हैं। एक दिन प्रभु गौरचंद्र श्रीवास के साथ बैठकर कृष्ण चरित्र कह रहे थे। उस समय पंडित श्रीवास की परीक्षा के लिए प्रभु विश्वम्भर बोले, श्रीवास तुम इस अवधूत को निरंतर अपने यहाँ क्यों रख रहे हो? किसको? नित्यानंद प्रभु को। इसकी जाति कुल का कुछ भी तो पता नहीं। तुम बड़े उदार हो, परंतु मैं ये कह देता हूँ, यदि तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा चाहते हो तो इस अवधूत को झट घर से दूर कर दो। किसको? नित्यानंद प्रभु। श्रीवास पंडित कुछ हंसते हुए बोले, आप मेरी परीक्षा करते हो प्रभु, ये उचित नहीं है। जो एक दिन के लिए भी आपको भगता है वही मेरे लिए प्राण समान प्रिय है। फिर ये नित्यानंद जी आपकी देह है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि श्री नित्यानंद मदिरा और मुसलमान स्त्री को भी ग्रहण कर लें, यदि वे मेरी जाति प्राण धन सब कुछ नष्ट कर दें, तो भी मेरे चित्त में उनके प्रति विपरीत भाव कदापि नहीं होगा। ये मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ। क्या कहा श्रीवास ने? नित्यानंद प्रभु को मैं तो भी नहीं मतलब उल्टा सोचूंगा, चाहे क्या करें वो, शराब पिए, मुसलमान स्त्री को रख लें, है ना, और मेरी जाति कुल सब नष्ट कर दें तो भी। श्रीवास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु हुंकार करते हुए उनके छाती से लिपट गए और बोले, क्या कहा श्रीवास पंडित, नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास? मेरे नित्यानंद को तुम जान गए, मैं संतुष्ट होकर तुमको वर देता हूँ कि स्वयं लक्ष्मी को नगर के घर घर में चाहे भिक्षा मांगनी पड़े, परंतु तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? लक्ष्मी को चाहे भिक्षा मांगनी पड़े लेकिन तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। तो क्या कह रहे हैं भगवान श्रीवास पंडित से? लक्ष्मी को चाहे भीख मांगनी पड़े घर घर, लेकिन तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी।
तुम्हारे घर, तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली आदि सबकी मुझ में निश्चल भक्ति होगी। श्रीवास पंडित को क्या वरदान दिया, तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली को भी ना मेरे चरणों में भक्ति होगी। मैं नित्यानंद को तुम्हें समर्पण करता हूँ, तुम स्वयं सब प्रकार से उनकी संभाल रखना। मदिराया वन यदि नित्यानंद घरे, जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे, तथापि आमारे चित्ते नहीं वे अन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे कहिनु एही कथा। एते के सुनिया जब श्रीवासेर मुखे, हुंकार करी है प्रभु उठे तार भुके। प्रभु बोले की बालीला पंडित श्रीवास, नित्यानंद प्रति तोर एते के विश्वास। मोर गोप नित्यानंद जानी ले से तुम, तुम्हारे संतुष्ट है यह भर दिए हम। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे न गरे न गरे, तथापि दरिद्र तोर नहीं व्यक्त घरे। बिराले कुकुर आदि तुम्हारे बाणी, सभारे आमाते भक्ति है वे किसी। अब एक और है भगवान का महाप्रकाश, मतलब ईश्वर भाव का भगवान ने प्रकाश किया सत प्रहर के लिए 21 घंटे लगातार श्रीवास के घर में। और प्रत्येक भक्त को जो है वो पिछली घटनाएं सुनाते हैं कि तुम्हारे ऊपर कैसे मैंने कृपा करी है। तो श्रीवास को चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु श्रीवास से बोले, अरे तुझे याद है तूने देवानंद पंडित के स्थान पर श्री भागवत सुनी थी। अब भगवान श्रीवास को वो घटना याद दिला रहे हैं जब तो भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जन्म नहीं हुआ था। और ये घटना श्रीवास के अलावा और किसी को पता भी नहीं है, श्रीवास ने इस घटना को किसी को नहीं बताया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुमको याद है जब तुमने देवानंद पंडित के घर में भागवत सुनी थी। भागवत तो पद पद पर प्रेम रसमयी है, उसे सुनकर तुम्हारा हृदय अत्यंत द्रवित हुआ, तब तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे और बेबल होकर भूमि पर गिर गए। मूर्ख विद्यार्थी भला भक्ति भाव को क्या समझे, वे कहने लगे ये इतना क्यों रोता पीटता है कुछ समझ में नहीं आता। तुम तो प्रेम के तरंगों में पड़े बाहर से बेसुख थे, विद्यार्थियों ने तुमको घसीटते हुए बाहर द्वार पर कर दिया। इस पर देवानंद ने उनको मना नहीं किया, जैसे गुरु मूर्ख था वैसे ही शिष्य भी मूर्ख थे। उन्होंने तुमको घसीट कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया, तब तुम वहाँ से बड़े दुखी होकर घर लौट आए थे। मन में दुख पाकर तुम एकांत में बैठे और श्रीमद् भागवत उठाकर देखने लगे थे, तब मैं तुम्हारा दुख देखकर वैकुंठ से आकर तुम्हारे देह में प्रकट हुआ। और मैंने तुम्हारे हृदय में बैठ अपना प्रेम देकर तुमको रुलाया, तब तुमको भागवत सुनकर बड़ा ही आनंद हुआ। तो तुम्हारे नेत्रों के जल से वो स्थान सारा भीग गया, मानो वहाँ वर्षा हुई हो। इस अनुभव को याद करके श्रीवास आनंद में विह्वल होकर भूमि पर लोटपोट हो गए और लंबी लंबी सांस लेकर रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा बताते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर ये कृपा करी थी। श्रीवास रे बोले, अरे पाले तोर मन भागवत सुनी निजी अमुके रसामिन, पदे पदे भागवत प्रेम रसमय सुनिया द्रवेले अति तुम्हारे हृदय। उच्च स्वर करे तुम्हें लगी लखंडिते, देवल है या तुम्हें पड़ी तम पड़ी लूमि के। अब दे पढ़ो या भक्ति योग न जनिया, बल गए कांदा है के न बुझ ले इहा। बाहे नहीं जान तुम प्रेम रे विकारे, पढ़ो या तुम्हारे निज बाहे ले हूं कारे। देवानंद इति न करे ले निवारण, गुरु यथा आज्ञे ते मत शिष्यगण। बाहर दुआरे तुम एले तनिया, तबे तुम्हें आईला परम दुख पयाम। दुख पावे मन तुम्हें बिरले बसिलाम, आरे वार भागवत चाहिते लगिलम। देखिए तुम्हार दुख श्री रूपम कहते, आगर भाव है लाम तुम्हार देहते। तब आमे तुम्हारे हृदय बसियाम, कंदाई लो अपना प्रेम योग दिया। अब ये घटना है कि श्रीवास पंडित के घर में जो है उनकी सास छिप करके बैठ गई, जिसको आप सुनिए। इस प्रकार नवद्वीप में श्री विश्वम्भर राय भक्तों के साथ नित्य संकीर्तन करते थे। रात्रि के समय द्वार बंद करके कीर्तन करते हैं, जिसमें कोई भी अन्य लोग प्रवेश नहीं कर पाते। एक दिन प्रभु श्रीवास के घर में नाच रहे थे, भीतर घर में श्रीवास की सास छिप करके बैठी थी पंडित श्रीवास आदि कोई भी नहीं जानते थे, वह कोठी में सिर देकर छिपी बैठी थी, यानी बड़ा डोल, बड़ा भारी डोल अपने सिर के ऊपर रख लिया था, तो छिप करके वो बैठी है। अच्छा, पर छिपने से क्या होता है, भाग्य तो नहीं था, थोड़े भाग्य से वह नृत्य देखने को नहीं मिलता। प्रभु नाचते नाचते बारम्बार कहने लगे कि क्या कारण है जो मेरे हृदय में उल्लास नहीं हो रहा है। प्रभु सब जीवों के घर घर बासी हैं, अतः सब जानते हैं, पर जान करके भी कुछ नहीं कहते, कौतुक करते हैं। प्रभु नाचते हुए बारम्बार कहते हैं कि आज मुझे सुख नहीं मिल रहा है, कौन जाने घर में कहीं कोई छिपा हुआ हो। सब लोग घर में देखने लगे, श्रीवास स्वयं सारा घर देख डाला, बाहर का व्यक्ति तो यहाँ कोई नहीं है। फिर ऐसा कहकर सब कीर्तन करने लगे, प्रभु सती नंदन भी उल्लास पूर्वक नाचने लगे, परंतु फिर रुक कर वे बोले, सुख नहीं आ रहा है, आज मेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा नहीं है। सब भक्त बहुत सोचते हैं, हमारे अतिरिक्त तो यहाँ और कोई है नहीं, शायद हम लोगों ने कोई अपराध किया है। कौन सोच रहे हैं, भक्त लोग सोच रहे हैं, जिसके कारण प्रभु का चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा है। श्रीवास पंडित दूसरी बार घर के भीतर गए तो देखा कि उनके साथ दुबकी बैठी है, श्री कृष्ण के भावावेश में महामत्त श्रीवास पंडित को अपने देह की ही सुधबुद नहीं रहती, फिर छोटे बड़े का विचार कहा, और उस समय तो प्रभु के वचन से उनका शरीर कांप रहा था, अतः उन्होंने अपने सास को निकल यहाँ से ऐसी आज्ञा देकर उसे केसों से पकड़ बाहर कर दिया। इस बात को कोई नहीं जान पाया, एक श्रीवास जी ही जान पाए। इधर प्रभु उसी क्षण बड़े उल्लास के साथ नाचने लगे, प्रभु बोले अब कितने उल्लास का अनुभव कर रहा हूँ, ये सुनकर श्रीवास पंडित हंसकर कीर्तन करने लगे। लेकिन ये घटना श्रीवास ने भी किसी को नहीं बताई, किसी को पता नहीं चली, चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन करने लगे। तब तो बड़े आनंद में कीर्तन का कोलाहल होने लगा, और सब वैष्णव आनंद में लोटपोट होने लगे। महाकौतुकी गौर सिंह नृत्य कर रहे थे, और महाबली नित्यानंद उनको संभाले हुए घूम रहे थे। नाचते नाचते तब बोले घन घन, उल्लास आमार आज नहीं के कारण, सर्वभूत अंतरिया में जाने न सकल, जाने आयो न कहे न करे कुतूहल, पोना पोना नाचे बोले सुख नहीं पाई, केवा जाने लुकाई या आज कौन ठाई, सर्ववाणी विचार करे ले जन जन, सेवा से चाहे ले कर सकल अपन, भिन्न के हो नहीं बल करे कीर्तन, उल्लास न चाहे प्रभु श्री सची नंदन, आर बार रहे बोले सुख नहीं पाई, आजीव आमार कृष्ण अनुग्रह नई, महात्रा से चिंते सब भाग्यवत गण, आम संभव आरी आर नहीं कोनो जन, आम राय कौन वकारे ले अपराध, अतएव प्रभु चित्त न पाए प्रसाद, आर बार ठाकुर पंडित घर गया, देखे ने जिसका थोड़ी आखे लुकाइया, कृष्णा जैसे महामत ठाकुर पंडित, जार बाय नाही तार किसे रे गर्वित, जिससे प्रभु रे वाके कंपित शरीर, आज्ञा दिया चूल धारी करी लबाहीर।
अब एक और घटना है, नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी रहता था, और वो बड़ा तपस्वी साधु था, और निर्दोष जीवन बिताता था, तथा दूध ही पीता और अन्न नहीं खाता था। वो प्रभु का कीर्तन देखना सुनना चाहता था, परंतु प्रभु तो द्वार बंद करके ही कीर्तन किया करते थे, वहाँ भक्त बिना और कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता था। मैं ब्राह्मण संकीर्तन के दर्शन कर पाने के लिए प्रतिदिन श्रीवास के निकट प्रार्थना करता रहता। वो कहा करता, यदि तुम एक दिन कृपा करके मुझे अपने घर के भीतर ले चलो, तो कहीं मैं निमाई पंडित का वह नृत्य देख सकूं और अपना नेत्र सफल करूं और कृतकृत्य हो जाऊं। इस प्रकार वह ब्राह्मण नित्य श्रीवास को मनाया करता था। अंत में एक दिन श्रीवास ने यह वचन कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो सदा से ही बड़े सज्जन हो, ब्रह्मचर्य सहित फलाहार करते हुए तुमने अपनी आयु बिताई है, अतः मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है, और संकीर्तन देखने का तुमको अधिकार है, पर वहाँ जाने के लिए किसी को प्रभु की आज्ञा नहीं है, अतः छिप करके रहना होगा, ये मैं तुमसे कह देता हूँ। इतना कहकर वे ब्राह्मण को घर ले आए। वो जाकर एक और कोर्ट में छिपकर बैठ गया। उधर प्रभु नृत्य कर रहे थे, साथ में चारों ओर महाभाग्यवान गण थे, सब बड़े कौतूहल पूर्वक गा रहे थे। कृष्ण राम मुरारी वन माली नित्यानंद गदाधर को पकड़े हुए घूम रहे थे और अद्भुतचार्य चारों ओर आनंद में भाग रहे थे। सुख में तल्लीन किसी को बाहर के सुख नहीं थी। दिसंबर देव के अश्रु कंप रोम हर्ष गंभीर हुंकार, इन भावों को कौन वर्णन कर सकता है। दिसंबर सर्वज्ञ शिरोमणि है, जान गए कि यहाँ एक गिप्त छिपकर बैठा है। अच्छा रुक रुक कर दिसंबर प्रभु कह दे, आज कीर्तन में उत्तरोत्तर अधिक प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आता, क्या कोई बाहर का आदमी घर के भीतर आया है, सब तो बताओ मुझे। प्रभु से तो यार दिया कर कीर्तन, प्रवेश नारे भक्त बिने अन्य जन, हे प्रकृति जन श्रीवास स्थान, नृत्य देखे मारे लागे साधा अपन, तुम यदि एक जन कृपा कर मोरे, अपने लई आ जाओ बाड़ी रभी तरिन, तब से देखी तिपांग पंडित नृत्य, लोचन सफल कारो हम कृत्य कृत्यम, हे मत प्रतिदन साधय ब्राह्मण, आरजन श्रीनिवास बलिल बचन, तुम्हारे तजाने सर्व काल बड़े भंग, ब्रह्मचर्य फलहार गुवाई लकान, कौन पाप नाहे जाने तुम्हारे शरीरे, देखी बारे तुम्हारे आशय अधिकारी, प्रभु रथे आज्ञा नाहे के हो जाए बारे, संगो पे थके वे बलिलु तुम्हारे, एक बलि ब्राह्मण रे लई अचलीला, एक देगे हा आड़ हई संगो पे थकीलन, नृत्य करे चतुर्दश भुवन रे नाथ, चतुर्दे के महाभाग्यवंत वर्ग साथ। अच्छा अब सर्वज्ञ रे चूड़ा मारे दिसंबर राय, जाने में पेलो कहिया आचाए ए थाएं, रहिया रहिया बोले प्रभु विश्वम्बर, आज के न प्रेम योग न पाम निर्भर, के हो नि आसिया आज बाड़ी रे बितारे, के सुनाए बोझो सत्य कहा देखी मोरे। श्रीवास डर कर कहने लगे, श्रीवास डर कर कहने लगे, प्रभु यहाँ कोई निंदक विमुख तो नहीं आया है, केवल एक ब्रह्मचारी जो बड़ा सज्जन ब्राह्मण है, सदा दूध ही पीता है, जीवन जिसका निष्पाप है, आपके दर्शन के लिए उसमें बड़ी श्रद्धा है, वह तो एकांत में अवश्य बैठा हुआ है। प्रभु सुनते ही क्रोध अमित में भर कर विश्वम्भर प्रभु बोले, तुरंत निकाल बाहर करो घर से उसे, मेरा नृत्य देखने की उसमें शक्ति ही का क्या है, दूध पीने से ही क्या मुझमें भक्ति हो जाती है। फिर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर अंगुली से अपने को दिखलाते हुए बोले, दूध पीने से कोई मुझे नहीं पाता, किंतु यदि चांदाल भी मेरी शरण लेवे तो वह भी मेरा है और मैं उसका हूँ, ये निश्चय जान लो, और यदि सन्यासी जी मेरी शरण नहीं लेता है तो वह भी मेरा नहीं है, ये मैंने सत्य कहा है। भला गजेंद्र बानरों और गोपों ने कौन सा तप किया, बताओ तो सही, उन्होंने किस तप के बल से मुझे पाया। असुर भी तो तप करता है, पर उसका फल क्या होता है, बिना मेरी शरण लिए उद्धार नहीं है। तो वो फिर बोले, दूध पीने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं सबका गर्भ पूर्ण कर दूंगा, यही देख लोगे। अत्यंत भयभीत होकर मैं ब्रह्मचारी निकल बाहर हुआ। वह महावीर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, अब ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, वो ब्राह्मण मन ही मन क्या सोचता है, इतना मेरा सौभाग्य था, इतना मेरा सौभाग्य था कि मैं कुछ देख तो पाया, और जैसा अपराध किया वैसा दंड भी मिल गया। ओहो अद्भुत नृत्य अद्भुत कीर्तन देखा, अपराध जैसा वैसी निंदा भी मिली। तो सेवक की ऐसी बुद्धि होती है, सेवक प्रभु के दिए हुए सब दंडों को सह लेता है, ऐसा मन में सोचता हुआ वह ब्राह्मण चल रहा था कि अंतर्यामी गौर सुंदर जान गए, और करुणा सागर को उन्होंने पुनः उसको बुलवाकर अपना चरण उसके मस्तक पर रख दिया। प्रभु बोले, मैं तप करता हूँ, इसका बल मत रखो, बस इतना जान लो कि विष्णु भक्ति ही श्रेष्ठ है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर समस्त भक्तों ने हरिध्वनि करके आनंद प्रकट किया। वो ब्रह्मचारी तत्काल भूमि पर दंडवत कर प्रणाम करने लगा। दो जन इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें गौर चंद्र प्रभु अवश्य ही मिलेंगे। जय हो जय हो। ब्रह्मचारी पर कृपा करके प्रभु आनंद के आवेश में प्रचुर नृत्य करने लगे। उस ब्राह्मण के चरण में मेरा नमस्कार है, जिसकी चैतन्य देव के दंड के प्रति ऐसी सुबुद्धि हुई, निंदा द्वेष नहीं हुआ।
मोर नित्य देखी ते वान कौन शक्ति पाया पान करे लेकिन मोहे हए भक्ति दुई भोज तोले प्रभु अंगुली देखाए पाया पान कब मोर के है नहीं पाई चंद ले हो मोहर तारण यदि लय ते हो मोर मोहि तार जानी है निश्चय सन्यासी हो यति मोर न लय शरण ते हो मोर न है सत्य बाली नु बचन गजेंद्र बानर गोप की तप करिन बोले देखे तारा मोरे की तपे पाइल आसुरे यो तपे करे की है तहार दिने मोर तारण लाई ले नहीं पान वो प्रभु बोले पाया पाने मोरे नहीं पाई सकल करे मुचुन देखी वा ए थाई महाभय ब्रह्मचारी है लबाहे मने मने चिंताए ब्राह्मण महाधीन हे मोर भाग्य बाण से किसु देख लू अपराध अनुरूप सत्यो पाइनु अद्भुत देख लो नृत्य अद्भुत क्रंदन अपराध अनुरूप पाइनु तर्दन सेवक हाइन ए मत बुद्धि हाइन सेवक से प्रभु रे सकल दंड सैन हे मत चिंतिया चाली ने विप्रवर जानी ले न अंतर्यामी श्री गौरे सुंदर डाकिया आनिया प्रभु पुन करुण सागर पाद पन्न दिला तार मस्तक ऊपर प्रभु बोले तप करे न करे है बल विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जानी है केवल हरे बाले संतोष सकल भक्त गण दंड भक्त है यह पढ़ी लत्य छन श्रद्धा करे जे जन सोना है राहत गौर चंद्र प्रभु ताय मिली भी आवश्यक ब्रह्मचारी प्रति कृपा करे या ठाकुर आनंद आवेश नृत्य कार्य न प्रसुन हे दुख चरण आवार नमस्कार चतन रजन है लहिन बुद्धि जार।
तो इस तरह से हमने श्रीवास पंडित के बारे में बहुत सी बातें सुनाई। उनके घर में कितनी भगवान लीलाएं करते हैं। अब एक और घटना है कि उनके घर में भगवान चतन नृत्य कर रहे हैं और उनका जो पुत्र है वो रोग से मर जाता है।
चतन नृत्य कर रहे हैं और उनका जो पुत्र था वो रोग से मर जाता है। तो घर में जो स्त्रियां हैं वो क्रंदन कर रही हैं, बहुत क्रंदन कर रही हैं। तो श्रीवास ठाकुर जो है घर के अंदर आए और उन स्त्रियों से कहा कि तुम लोगों को विचार करना चाहिए कि यहाँ दुख की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जिन प्रभु के नाम लेने मात्र से कोई मरण की व्यक्ति वैकुंठ में चला जाता है, वे साक्षात जो है ना भगवान यहाँ नृत्य कर रहे हैं प्रेम से। तो ऐसे में जिस बालक की मृत्यु हुई है तो बहुत भाग्यशाली है। अगर मुझको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं कृतकृत हो गया होता और फिर भी अगर तुम लोग संसार धर्म को नहीं छोड़ना चाहती हो, यानी अगर रोना ही चाहती हो तो धीरे धीरे रो। अगर तुम्हारे रोने से अगर भगवान चैतन्य के जो है नृत्य में अगर बाधा हुई तो मैं क्या करूँगा, गंगा जी में कूद करके प्राण त्याग कर दूंगा, है ना। तो ऐसा सुनकर के फिर जो स्त्रियाँ हैं वो बिल्कुल चुप हो गई या धीरे धीरे रो रही थी। श्रीवास पंडित ने जब इस प्रकार से उनको मना किया तो आगे चल करके फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे एक भक्त से दूसरे भक्त के कानों में ये बात पहुंची और भगवान चैतन्य का भी नृत्य रुक गया। और भगवान चैतन्य कहते हैं कि क्या बात है, कुछ शिवाज के घर में कोई दुर्घटना घटी है क्या। तो फिर भक्तों ने बताया, श्रीवास तो बोले कि नहीं प्रभु, मैं तो बहुत सुखी हूँ, अगर जब आपका सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा हूँ तो मुझे क्या दुख, जबकि 7 घंटा हो चुका है उस पुत्र को मरे हुए, 7 घंटा हो चुका है रात, मतलब हो चुकी है 7 घंटे रात बीत चुकी है। फिर श्रीवास कहते हैं कि नहीं नहीं कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। तो फिर भक्तों ने जब बताया कि इनका पुत्र का देहांत हो गया है ना, तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं, इतनी देर 7 घंटे हो गए। श्रीवास कहते हैं कि इससे बढ़कर के और मेरा क्या सुख हो सकता है कि आप मेरे घर में नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान चैतन्य फिर जो है रोने लगे ये कह करके कि देखो जिसने इतना जो ना मेरे लिए क्या किया है उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद फिर श्रीवास के पुत्र को जो है भक्त लोग सोच रहे हैं कि अब इसका क्रियाकर्म किया जाए। तो भगवान चैतन्य उसको उससे पूछते हैं कि तुम श्रीवास के घर को क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो जो मरा हुआ बालक है वो बोलने लगा,
और क्या कहता है कि आपके विधि विधान के अनुसार जो है जब मैं जा रहा हूँ तो किसकी उलटने की शक्ति है, आपके विधान को उलटने की शक्ति किसकी है, और मैं ऐसे स्थान में जा रहा हूँ जहाँ कर्म का कोई बंधन नहीं है। और इस प्रकार से उसने चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया, आपके चरण में मेरा नमस्कार है, और चैतन्य महाप्रभु जो है ना उससे इस प्रकार से बातचीत करते हैं और फिर उसकी आवाज बंद हो जाती है। तो जितने भी भक्त हैं वो बड़े चकित हो जाते हैं, और श्रीवास के घर में जो जितना पुत्र के मृत्यु का जो शोक था उसका शोक दूर हो जाता है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो है ना चमत्कार श्रीवास के घर में ऐसा हुआ। आप कोई प्रश्न है किसी का, या मैं प्रश्न करूंगा? आपका प्रश्न, उनका प्रश्न है कि जब श्रीवास पंडित किसी कर रहे थे भगवान चैतन्य की, उन्होंने कहा कि गंगादास पंडित के शिष्य हैं। हाँ, गंगादास पंडित के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। गंगादास पंडित जो है सांदीपनी मुनि के अवतार हैं। जिस प्रकार से भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गंगादास पंडित के टोल में विद्यार्थी थे। हाँ, और वो ईश्वरपुरी जो है ना उनके जो है ना दीक्षा गुरु थे, लेकिन गंगादास पंडित ने जो है ना उनको मतलब बाकी जो आवश्यक शिक्षा होती है, तो वो सब प्रदान की है। और कोई प्रश्न किसी का? उनका प्रश्न है कि वो श्रीवास के पुत्र ने कहा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कर्म का कोई बंधन नहीं है, और यहाँ श्रीवास के घर में भगवान चैतन्य नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इससे अच्छे स्थान क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन फिर वो बालक यही कहता है कि आपकी इच्छा के अनुसार ही मैं जा रहा हूँ, मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, आप जहाँ मुझे भेजना चाहेंगे वहीं मैं जाऊँगा। इस तरह से वो समर्पित है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, और वो कहता है कि जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे ही मैं जा रहा हूँ। और उसने फिर ये ऐसा ज्ञान दिया जिससे कि फिर मोह दूर हो गया सकता है। उसने कहा कि इस संसार में कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है ना। सब जी अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और शरीर छोड़ते हैं, है ना। इससे श्रीवास के घर में जो पारिवारिक मोह था कि मेरा पुत्र है ये, इस कारण से जो शोक कर रहे थे वो सब शोक दूर हो गया। और इस घटना से फिर श्रीवास के जितने परिवार के लोग थे उनके चैतन्य महाप्रभु चरणों में इतनी भक्ति बढ़ी कि सबने फिर प्रार्थना की कि जन्म जन्म हमें बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जितना मोह था वो सब दूर हो गया। तो ये भी चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष लीला है। तो अब मैं प्रश्न करूं, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास की जब परीक्षा लेनी चाहिए तो क्या कहा था श्रीवास से उन्होंने? नित्यानंद प्रभु को अपने घर से भगा दो। क्यों क्यों भगा दो? हाँ, जाति पांडे कुछ पता नहीं है, अद्भुत है ये, है ना, तुम्हारी भी जाति पांच सब नष्ट हो जाएगी। तो श्रीवास पंडित ने फिर क्या कहा? हाँ, चाहे हमारे कुल को का विनाश कर दें और हमारी जाति का विनाश कर दें और मुसलमान से शादी कर लें और शराब किए हैं, तो भी मैं इनका त्याग नहीं कर सकता हूँ, मेरी आदर की भावना बनी रहेगी। क्यों नित्यानंद प्रभु के प्रति इतनी आदर की भावना क्यों बनी रहेगी उनकी? हाँ, क्योंकि ये आपके शरीर हैं, नित्यानंद प्रभु आपके शरीर हैं, तो मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। धन्यवाद। श्री श्री राधा पार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोंडदाय भगवान की, श्री श्री सीताराम हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की, श्री श्रीवास पुण्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, हरे कृष्णा।